प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहां, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया में कुशल पूर्वक हैं और उसके निकटता में रहकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि एक परमेश्वर का जन या संतान किस प्रकार से पहचाना जाता है और इसके लिए यूहन्ना ने हमारे सामने एक परीक्षण को रखा कि हम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम अपने भाई से प्रेम रखेंगे, परंतु यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अपने आप को दावा देते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं तो यह झूठा है, हम अंधकार में हैं। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी कि आपने हमें फिर से यह अवसर दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, हर एक प्रकार की कमी घटी और त्रुटियों को हमारे जीवन से बाहर करने पाए, आपका प्रेम हम में बढ़ने पाए। इस समय हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना के लिए अपने आप को आपके सम्मुख लाए हैं। प्रभु जी, आप उनके जीवन की हर एक तकलीफों को जानते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुने, उन पर दया दृष्टि करें, बीमारों से छुटकारा दें, उनके कार्यों पर आप अपनी आशीष दें, आज के वचन के द्वारा उन्हें सामर्थ दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, यूहन्ना विश्वासियों के तीन वर्गों की चर्चा करके कहता है कि प्रभु यीशु के नाम से उसके पाप क्षमा हुए और विश्वासियों की शक्ति का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ही हमारी तलवार है जिसके वार से शैतान पीछे हटता है। अतः हमें परमेश्वर के वचन का भरपूर ज्ञान रखना है, सीखना है। जिस प्रकार हम दैनिक भोजन करते हैं कि शरीर चुस्त एवं स्वस्थ रहे, उसी प्रकार हमें दैनिक आत्मिक भोजन परमेश्वर का वचन बाइबल का अध्ययन करना है कि हम शैतान से अपनी रक्षा करने में सक्षम रहें एवं हम सामर्थी बनते जाएं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला यूहन्ना की पत्री 2:13 को पढ़ें। 2:13 में लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। यहां पर वह कहता है हे पितरों, अर्थात प्रभु को वर्षों से जानकर विकसित होने वाले परिपक्व विश्वासी। मेरा अपना विचार है कि दाऊद ने अपनी वृद्धा अवस्था में भजन संहिता 23 लिखा था, क्योंकि यह भजन जीवन की परीक्षाओं के परिणाम स्वरूप उभरा था और युवावस्था में दाऊद यह भजन लिखने के योग्य नहीं था। इस भजन के आधार पर दाऊद यूहन्ना के पितरों वर्ग में आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिंहासन पर बैठने के बाद जब दाऊद ने अपने अतीत पर ध्यान दिया तब यह भजन उसके मन में उभरा था। उसे स्मरण हुआ कि वह अपनी युवावस्था में भेड़ों को कैसे शेर और भालू से बचाता था और अब वह अपनी प्रजा का रखवाला अर्थात चरवाहा था। उसे योनातान की मित्रता और शाऊल से जान बचाकर भागने का भी स्मरण हुआ। हेब्रोन में उसका शासन और अंत में 12 गोत्रों पर उसका राज्य, उसका भयंकर पाप और परमेश्वर की अनुग्रहकारी क्षमा जब उसने पाप स्वीकार किया, उसके सर्वप्रिय पुत्र अबशालोम का विद्रोह, यरूशलेम से भागना, अबशालोम की मृत्यु का दुख आदि सब घटनाओं को स्मरण करके वृद्ध दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संहिता 23:1 में लिखा है। परमेश्वर की परिपक्व संतान होने के कारण उसने देखा कि परमेश्वर कैसे उसे हरी हरी चारागाहों में बैठाता है और सुखदायी जल के पास झरने में ले जाता है। वह उसके जी में जी ले आता है। दाऊद जैसे विश्वासियों को ही यूहन्ना पितरों कहता है। तब वह कहता है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। ये विश्वासी पितरों के बराबर परिपक्व नहीं है, परंतु उन्हें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा बैरी पर जय पाने का भेद पता है। उन्होंने सीख लिया है कि परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जिएं। आप यह न कहें कि युवाओं के लिए आज मसीही जीवन जीना संभव नहीं है। तब वह कहता है, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। ये वे विश्वासी हैं जो केवल इतना ही जानते हैं कि वे परमेश्वर की संतान हैं। वे इससे अधिक जानना भी नहीं चाहते हैं। कितने विश्वासी इस वर्ग में आते हैं। कलिसियाएं विश्वासियों की बालशाला से भरी हुई है। उनके बाल चक्र बढ़ गए हैं, परंतु वे अभी नाबालिग विश्वासी ही हैं। उनका विकास नहीं हुआ है। वे परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ पाए हैं, ठोस भोजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी तक दूध ही पी रहे हैं। मेरे मित्रों, यूहन्ना और कुछ कहता है। वह विश्वासियों के इन वर्गों को फिर से संबोधित करता है। आइए हम पढ़ें पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यहां पर वह कहता है, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। यूहन्ना इससे अधिक और कुछ नहीं कहता क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो और उसके मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ऐसे ही विश्वासी मसीह में पितर बनते हैं। मेरे मित्रों, आप किसी को कैसे जानते हैं? उसके साथ दिन प्रतिदिन रहने के द्वारा। मेरी पत्नी कई वर्षों से मेरे साथ रह रही है, अतः वह मुझे जानती है। जब मैं बीमार था तब हम बैठकर आपस में बातें करते थे। वह मेरा बहुत ही अच्छा समय था। अब हम दोनों एक दूसरे को और भी अधिक गहराई से जानते हैं। हम प्रभु यीशु को कैसे जानेंगे? जी हाँ, उसे जानने का एकमात्र मार्ग है धर्मशास्त्र। विश्वासियों का प्रायः मानना यह है कि सप्ताह में एक बार बाइबल अध्ययन करके हम संत बन गए हैं। मैं उनकी बात मानता हूं, परंतु एक अच्छा भोजन करने के बाद एक सप्ताह भूखे रहना, क्या यह उचित है? आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अतः मैंने दैनिक बाइबल अध्ययन रेडियो पर आरंभ कर दिया है। परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु को जानने के लिए हमें उसके वचन में बने रहना है, चाहे हमारे जीवन में आनंद हो या दुख हो, उसके वचन में बने रहना है। अब दूसरा वर्ग है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। यूहन्ना पहले भी कह चुका है कि जवान बलवंत हैं और वे दुष्ट पर जयवंत हैं, और अब वह भेद की बात प्रकट करता है, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। मेरे मित्रों, क्या हम दुष्ट पर जय पा सकते हैं? जी हां, परमेश्वर के वचन के द्वारा से। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस विश्वासियों के हथियारों की सूची देता है, जिनमें आक्रमण करने का हथियार है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। शैतान से सुरक्षा करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। संसार के पाप में गिरने का मुख्य कारण है कि विश्वासी परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं। जी हाँ, आपको शारीरिक बल के लिए दिन में 3 बार भोजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपको बलवंत होने के लिए आत्मिक भोजन की भी आवश्यकता है। आप दिन में कितनी बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या आत्मिक भोजन को खाते हैं? जब तक आप आत्मिक भोजन नहीं लेंगे, आप बलवंत नहीं होंगे। वह आगे कहता है, प्रिय बालकों को संसार से प्रेम नहीं रखना है। बहुत से लोग इस अंश को यूहन्ना के पूर्वोक्त विचारों से अलग करते हैं, परंतु मैं यह मानता हूं कि यह अंश यूहन्ना की परिचर्चा का ही एक अभिन्न भाग है। यूहन्ना कह रहा है कि हम विश्वासी कैसे जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने कहा है कि हम उससे प्रेम रखेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसकी संतान हैं। आगे यूहन्ना कहेगा कि उसकी आज्ञाएं कष्टदायक नहीं हैं। ये आज्ञाएं 10 आज्ञाओं के अतिरिक्त हैं। हम प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंधों द्वारा परम पवित्र स्थान में लाए गए हैं। मुझे किसी का यह विभाजन बहुत अच्छा लगता है। रोमियो की पत्री दर्शाती है कि हम बंधुआई के घर से कैसे बाहर आते हैं। इफिसियों की पत्री दर्शाती है कि हम भोज के घर में कैसे प्रवेश करते हैं। और इब्रानी की पत्री से प्रकट होता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट कैसे आते हैं। और पहला यूहन्ना दर्शाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आते हैं। मेरे मित्रों, अपने पड़ोसी ही नहीं, अपने लिए भी विश्वास और प्रमाण यह है कि हम परमेश्वर की सच्ची संतान हैं। हम अपने हर एक काम में और अपनी मनोकामनाओं द्वारा उसे प्रसन्न करें। आज कुछ लोग दांत दबाकर कहते हैं, हाँ मैं उसकी आज्ञा मानूंगा, परंतु उनकी प्रेरणा प्रेम नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा मानने का प्रेरक बल है प्रेम। यूहन्ना 14:15 में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन प्रेम से प्रेरित होकर करते हैं तो आपकी अनेक पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा और आप मन की अनेक शंकाओं से दूर रहेंगे। यदि कोई मसीही जीवन का छोटा सा सूत्र सिखाता है तो सब उसके पास भागे चले जाते हैं। विश्वासी किसी न किसी पर आधारित रहना चाहते हैं, चाहे वह एक सूखा दुर्बल सरकंडा ही क्यों ना हो जिससे उन्हें सहारा नहीं मिलता है। मसीही जीवन प्रेम के संबंधों पर आधारित होता है। उद्धार प्रेमालाप है। यूहन्ना इस विषय में और अधिक चर्चा करेगा जब 4:19 में वह कहेगा, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना की पत्री 2:15 में आगे हम पढ़ते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहां पर लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यूहन्ना किस संसार के बारे में कह रहा है? यह वह संसार नहीं जिसे परमेश्वर ने बनाया, पेड़ पौधे फूल पत्तियां आदि। इस संसार को तो परमेश्वर ने हमारे ही लिए बनाया है कि हम उसका आनंद लें, आनंद उठाएं। यूहन्ना इस सुंदर पृथ्वी के विषय में नहीं कह रहा है, हमें पहाड़ों से झरनों से जलप्रपातों से घृणा नहीं करना है, हमें इनकी सराहना करनी है, इनका आनंद लेना है। न ही यूहन्ना मानव जाति के संसार के विषय में कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में हम इसको पाते हैं। यह वह संसार है जिसका सरदार शैतान है और जो परमेश्वर से विद्रोह करता है। अतः हमें परमेश्वर विरोधी बातों से प्रेम नहीं करना है। जी हां, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, हमें उन कार्यों को नहीं करना है, उन बातों को नहीं करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:30 में प्रभु यीशु ने इस संसार को शैतान की संपत्ति कहा है, कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। मेरे मित्रों, जिस संसार में आप और मैं वास करते हैं उसका सरदार शैतान है। उसने प्रभु यीशु से कहा था कि यदि वह उसे दंडवत करे, झुककर प्रणाम करे, तो वह यह संसार उसे दे देगा। हमें इस संसार से प्रेम नहीं करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यह इस संसार का शैतानी राज्य है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस भौतिक संसार की चर्चा करता है और इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 2 पद में वह जिस संसार की चर्चा करता है वह लालसाओं, स्वार्थ, भोग विलास, छल, झूठ और संकटों से भरा है। इसी संसार में हम रहते हैं। यूहन्ना कहता है कि हमें इस संसार से प्रेम नहीं करना है। हम परमेश्वर विरोधी संसार में वास करते हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता परमेश्वर विरोधी है, जिससे प्रेम रखना परमेश्वर की संतान के लिए अनुचित है। हमें इस संसार में परस्पर क्रिया करना है, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखें कि हम इस संसार में रहते हैं, परंतु हम इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लिए चुन लिया है। यदि हम उसके साथ उसकी सहभागिता में उसके प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो हमें इस संसार की मोह माया से दूर रहकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमें यह निश्चित जान लेना है कि हमें किसी न किसी संसार का आज्ञाकारी होना है। जी हाँ, आप या तो इस संसार में रहकर उसका अनुसरण करेंगे या परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे। सुनिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस क्या कहता है, ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पौलुस कहता है कि उसके और इस संसार के बीच क्रूस खड़ा है। परमेश्वर की संतान होने के कारण मैं प्रभु का आज्ञाकारी हूं और प्रभु यीशु के क्रूस पर गर्व करता हूं। आज निश्चय ही यह संसार प्रभु यीशु के क्रूस पर गर्व नहीं करता है, क्योंकि उनके लिए क्रूस मूर्खता की बातें हैं। हम देखते हैं कि पत्रस भी इसी बात को कहता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। इस संसार के भ्रष्ट और अशुद्ध बातों को हम देखते हैं। आज हवा और पानी के प्रदूषण की बारे में बहुत अधिक चर्चाएं होती है, परंतु अश्लीलता और अभद्र भाषा से मन के प्रदूषण के विषय आप क्या कहेंगे? मनुष्य की आत्मा जो इन बातों से ग्रसित है उसके विषय आप क्या कहेंगे? यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप पूरा सप्ताह शैतान के लोगों में रहकर रविवार के दिन प्रभु की प्रजा के साथ संगति कर लें, परंतु यह तो स्पष्ट है कि परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर के लोगों के जैसा नहीं है, उसकी संतान के जैसा नहीं है, क्योंकि आप शैतान के लोगों के साथ रहकर वैसा ही व्यवहार करते हैं। मेरे प्रियो, रोम को लिखे अपने पत्र के अध्याय 7 में पौलुस अपने संघर्षों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, मैंने यह देखा है कि मेरी देह में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है, मुझे जो नहीं करना है मैं वही करता हूं, मेरा नया स्वभाव जो करना चाहता है उसे पुराना स्वभाव बाधित करता है, पुराना स्वभाव पीछे हटता है और उस काम को नहीं करेगा। मेरे मित्रों, इस प्रकार एक विश्वासी जब तक इस संसार में है उसके मन में यह पुराने और नए स्वभाव का द्वंद्व चलता रहता है, क्योंकि पुराना स्वभाव इस संसार से घुल मिल गया है और उसको यही स्वभाव अच्छा लगता है। नया स्वभाव जो प्रभु ईश्वर के द्वारा हमें मिलता है, उस स्वभाव में हमें बढ़ते जाना है, और जब हम उसमें बढ़ते हैं तो शैतान हमें बढ़ने नहीं देता है, हमें संसार की मोह माया में फिर से वापस लाना चाहता है। और यही कारण है कि बहुत से विश्वासी आरंभ के दिनों में वचन सुनकर यीशु पर विश्वास तो करते हैं, परंतु धीरे धीरे फिर वे संसार की ओर लौट आते हैं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कहता है कि हम परमेश्वर के वचन को अधिक और बार बार पढ़ें, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, और जब हम उसे जानेंगे तो हम उससे और अधिक प्यार करेंगे, उसके निकटता में बने रहेंगे। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? क्या आप उसके निकटता में बने रहना चाहते हैं? यदि आप बलवंत होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर विश्वास करें और उसे प्रतिदिन पढ़ें, ताकि वचन आपके जीवन में अधिकाई से आने पाए और आप परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने पाए। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं यह आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आपने इस बात को जान लिया है कि किस प्रकार आप परमेश्वर की निकटता में रह सकते हैं और संसार में विजयी हो सकते हैं, जो परमेश्वर आपसे यही उम्मीद करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। Yeah।